रावण का महल कोई एक नहीं है कि एक महल हो तो हम कहेंगे रावण का महल है। रावण के महलों की एक पूरी बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ नाना प्रकार के महल है, कोई छोटा महल तो कोई बड़ा महल, कोई सतमंजिला विमान, देखो सतमंजिला जो मकान होता है उसको विमान बोलते हैं, कोई कैसा कोई कैसा, एक ऐसा जो है सबसे श्रेष्ठ सबसे सुंदर सब भवनों के बीच में घिरा हुआ बहुत ऊंचा एक महल, उस महल के चारों तरफ अलग से खाई बनाई हुई, उस महल के चारों तरफ अलग से परकोटे बनाए हुए। अरे ये तो नगर के पीछे होते हैं पर रावण के महल के लिए अलग से सुरक्षा थी ना, रावण के उस महल के अंदर जो नाचने गाने की बड़ी आवाज आ रही थी, वहां पर हाथियों के चिंगाड़ने की और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज इतनी जोर से उठती थी कि लोग अपनी बात करने में भी अपने शब्दों को जोर से बोलते थे, नहीं सुनाई ना दे लोगों को हाथी की चिंगाड़ों के अंदर। ऐसा वो रावण का महल का वातावरण देखा तो हनुमान जी महाराज किसी एक महल के अंदर प्रवेश कर गए जो सबसे सुंदर दिखाई दे रहा था। रक्षसादि पतेर गुप्तम आविवेश गृहम कपि, एक बड़ा गुप्त महल था। हनुमान जी महाराज ऊंचे बहुत थे, बड़ी सावधानी से जा रहे थे ना, इसलिए उन्होंने वो महल देखा, महल देख करके उस महल के अंदर हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए। और जिस समय वे प्रवेश किए हैं उस समय हनुमान जी महाराज असल में बिल्कुल सही महल में प्रवेश किए हैं, और उस महल में प्रवेश किए उस समय चंद्रमा है वो पूरे अपने प्रकाश में है। आज चंद्रमा ने हनुमान जी का बड़ा साथ दिया है। और उस समय में देखा उन्होंने कि ये चंद्रमा बड़ा विचित्र है, लोगों के पापों का शमन करता है और समुद्र का जो जल है उसको ये बढ़ाता रहता है। देखो जब चंद्रमा बढ़ता है तब समुद्र का जल भी छोले मारता है, और जब कृष्ण पक्ष आता है तो समुद्र का पानी की छोले वो पीछे चली जाती है। लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महो दधिम चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्। ऐसे चंद्रमा को उन्होंने देखा, चंद्रमा की शोभा बड़ी विचित्र थी, जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर लक्ष्मी विराजमान हो, जिस प्रकार से रात्रियों के अंदर सागर के ऊपर लक्ष्मी विराजमान हो, जिस प्रकार से कमल के ऊपर लक्ष्मी विराजमान हो, इस प्रकार से ये चंद्रमा रात्रि के अंदर विराजमान दिखाई दे रहा था। ये चंद्रमा एक हंस के समान, ये चंद्रमा सिंह के समान, ये चंद्रमा जो है हाथी के समान दिखाई दे रहा था। ये चंद्रमा बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा था, और इस चंद्रमा के उदित हो जाने पर बड़ी शांत और शीतल किरणें निकल रही थी। जिस प्रकार से एक शिला तल के ऊपर सिंह बैठता है, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी बड़े भारी जंगल में हाथी निर्भय होकर विचरता है, जिस प्रकार से राज्य को प्राप्त करके राजा खुश रहता है, ऐसे आज चंद्रमा रात्रि के अंदर बड़ा जो है सुंदर सुशोभित हो रहा है। चंद्रमा के प्रकाश से रात्रि का दोष नष्ट हो गया, और प्रवृद्ध रक्ष पिशिताश दोष है, और राक्षस लोग जब बढ़ते हैं और वे तरह तरह का भोजन बनाते हैं, और भोजन का जो दोष है उस दोष को वो बढ़ा रहा है, अर्थात रात्रि के अंदर निशाचर भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर दोष होता है, वो मांस आदि पकाते हैं तो उनके मांस पकाने के उनका जो दोष है उसको वो बढ़ा रहा है। चंद्रमा रात होगी तभी तो बढ़ाएंगे। रामाभिरामे ऋत चित्त दोष है, और दूसरे जो राक्षसियां हैं उनके चित्त में भी दोष बढ़ा रहा है। ऐसा ये प्रदोष माने चंद्रमा ये वास्तव में रात्रि के अंदर जगमगा रहा है। कई पर तंत्रियां बज रही हैं, कोई निशाचरियां अपने पति को भोजन करा रही हैं, कहीं कहीं पर वीरांगनाएं माने वीर स्त्रियां वे वहां अपने पतियों को शस्त्र दे करके उनको सावधान कर रही हैं कि आप शस्त्र लेकर के सावधान वो लंका की रक्षा में जाओ। इस प्रकार से विनोदपूर्ण बातें भी हो रही हैं। परस्परम च अधिकम आक्षिपंती, प्रेम से एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, प्रेम की वहां पर बातें होती रहती हैं। राक्षस लोग हैं, वे राक्षस लोग अपने वक्षस्थल पर कवच वगैरह पहन करके तैयार हो गए हैं और वहां की स्त्रियां और वे सब आपस में मिलकर के कोई हंसती है तो कोई क्रुद्ध होती है तो कोई पास पड़ोस में बैठ करके अनेक प्रकार की बातें करती रहती है। रात्रि के समय में ये सब स्त्रियां बैठ करके जो है जगती रहती है। इन राक्षसों में बहुत से बुद्धि प्रधानान रुचिरा विधानान, देखो वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड है, हो इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन इसके सुनने का फल बहुत है, इसीलिए इतना विस्तार कहते हैं। नहीं तो कहते रात्रि का समय था, अर्थ तो इतना निकलेगा कि रात का समय था, पर आखिर जो है हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है तो यही थोड़ी लिखा है। तो कह रहे हैं वहां पर बड़े बुद्धिमान राक्षस लोग थे। वे राक्षस लोग नाना प्रकार के शास्त्रों के अर्थ निकाल करके आपस में एक दूसरे से सलाह कर रहे थे। थे वे राक्षसी पर शास्त्रों का अपने ढंग से अर्थ निकाल करके अर्थ कर रहे थे। स्वरूपों को देखकर, अच्छे रूप वालों को देखकर कोई नाच रहा है और कोई कुरूपों को देख करके उनकी हंसी उड़ा रहा है। रात्रि के अंदर ये हो रहा था। उनकी स्त्रियां हैं, उनका भाव बड़ा विशुद्ध है। वे स्त्रियां अपने पतियों को भोजन कराने के बाद, पतियों को मदिरा पान कराने के बाद स्वयं भी मदिरा पान करती हैं और मदिरा पान में वो मस्त रहती हैं। और वे स्त्रियां जलती हुई अपने घरों के अंदर जलती हुई रोशनियां रखती हैं और चंद्रमा का प्रकाश तो है ही, चंद्रमा के प्रकाश हो जाने के बाद भी जिन कक्षों में चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, रात्रि में वे स्त्रियां अपने उन सब कमरों के अंदर प्रकाश रखती हैं। इस प्रकार से अप्रावृता कांचन राज वर्णा, देखो कई कई ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने आभूषणों को बराबर सजाती रहती हैं और बहुत सी ऐसी लज्जाहीन स्त्रियां हैं कि जो अपने वस्त्र वगैरह का भी पूरा ध्यान नहीं रखती है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सबको देख रहे हैं और नत्वेव सीताम परमाभिजाताम पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम, उनके मन में आया है कि ओहो कहां ये सीता इस लंका के अंदर लाई गई होगी, कैसी कैसी यहाँ पर ये बातें हैं, यहाँ सीता कितने ऊंचे कुल में पैदा हुई, यहाँ कैसे लाई गई है, कैसे यहाँ रह रही है, ओहो सबको मैं देख रहा हूं पर सीता हमको नहीं दिखाई दे रही है। वो सीता तो सब स्त्रियों में विशिष्ट होगी, वह अपने मन से सदा पति का स्मरण कर रही होगी। वो सीता लंबी लंबी श्वास लेकर के अपने मनोभाव अपने अंदर ही रख रही होगी। वो सीता एक चंद्रमा की रेखा के समान है, जो चंद्रमा की रेखा बढ़ते बढ़ते पूनम को प्राप्त हो जाती है और घटते घटते वो अमावस्या हो जाती है। ओहो चंद्रमा बताता है कि सीता जो है सीता की शोभा घटती और बढ़ती है। राम जी के पास रहती है तो सीता मेरे जैसे बढ़ती रहती है और रावण के यहाँ बैठी हुई सीता इसकी कांति घटती जाती है। ऐसे वे हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। विचार करते करते अनेक महलों के अंदर हनुमान जी महाराज एक महल में प्रवेश करते हैं। उस महल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं और उस चंद्रमा के प्रकाश में वह महल बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके ऊपर बहुत ऊंची ऊंची झंडियां लगी हुई हैं और उसके अंदर तरह तरह के कक्ष हैं। उस एक महल के अंदर अनेकों शूरवीर अंदर भी उपस्थित हैं, बाहर भी उपस्थित हैं। उस महल के अंदर हाथियों की शाला अलग है, घोड़ों की शाला अलग है, रथों की शाला अलग है और वहां पर सिंह के, व्याघ्र के, इनके तरह तरह के चित्र बनाए हुए हैं। उस भवन के अंदर तरह तरह से आवाजें आ रही हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा आसन है, उस आसन बिछा हुआ है, वो अनेक रत्नों से सुशोभित है और उस आसन के अगल बगल में कई प्रकार के मृग और पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और उस आसन के दूर दूर तक जो है रक्षा करने वाले लोग शस्त्र लिए हुए रक्षा करते हैं, और कई श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां उस महल के अंदर ही स्वयं है, दूसरा कोई पुरुष नहीं, उसके बार बार ये पुरुष लोग सेवा करने वाले, वहां अंदर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। वो अपने कोई चंदन घिस रही है तो कोई वीणा का स्वर बजाने में अभी जो है तैयार हो रही है, कोई उस समय में रावण के लिए वस्त्र उपस्थित कर रही है, और कोई किसी प्रकार से उनकी और सेवा है, जैसे पान आदि की सेवा है वो दे रही है। वो ऐसा लग रहा है महल कि वो बड़ा भारी कोई जंगल हो, और उसमें जो नाद हो रहा है मानो सिंहों का सा नाद हो रहा हो। उस महल के और अंदर सिंह जो है हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद उनको मालूम दिया कि ये लंका का आभूषण यही है, सबसे मूल्यवान घर यही है, और शायद हनुमान शायद रावण के पास में यही कहीं सीता हमको मिल सकती है, क्योंकि इससे सुंदर दूसरा कोई महल नहीं है। चलो इस महल के आसपास पहले किन किन के महल है जरा और देख लेते हैं, ताकि इस महल को हमें बाद में देखना है। पास में महल प्रहस्त का है, फिर महापार्श्व का है, कुंभकर्ण का है, विभीषण का है, महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जम, विद्युन्माली, वज्रदंष्ट, शुक, सारण, इंद्रजीत माने मेघनाद, जम्बुमाली, सुमाली, रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, व्रजकाय, धूम्राक्ष, विद्युतरूप, सुकनाम, शठ, और दूसरे कई कई ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े अतिरथी महारथी है, उनके घर है, ताकि इनके संदेश से बहुत बड़ी राक्षसी सेना बहुत जल्दी उपस्थित हो सकती है। इस प्रकार से वो महल, रावण का महल, चारों तरफ से इन बड़े बड़े अतिरथियों से सुरक्षित है, और अतिरथियों के घरों में बहुत बड़ी सेना है, अतः वो रावण हर तरह से सुरक्षित है। ऐसे के बीच में जो रावण का महल है बड़ा शोभा दे रहा है, जिस प्रकार से वन के अंदर सिंह की शोभा होती है, ऐसे वहां पर रावण की शोभा हो रही है, माने रावण का जो महल बहुत जो है श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहा है। और वहां देखते हैं वो कि राक्षसराज रावण के महल के चारों तरफ और विशेषता से सुरक्षा की गई है, कोई सफेद कपड़ों में है, कोई काले कपड़ों में है, कोई शस्त्र लिए हुए है, कोई शस्त्र लिए हुए नहीं है। रावण के महल के चारों तरफ भी पूरे गुप्तचर लगे हुए हैं, और हर थोड़ी दूर के ऊपर शस्त्र का आगार है, कभी सेना के पास कब शस्त्र की जरूरत पड़े वहीं से आगार से शस्त्र ले आवे, इस प्रकार से उसकी सुरक्षा हो रही है। वहां पर विविध प्रकार के रावण के महल के अंदर पलंग हैं, उन पलंगों के अंदर तरह तरह से जो है कपड़े बिछाए हुए, तरह तरह के रंगों के कपड़े, एक पलंग नहीं पलंग के पलंग है बहुत से। वहां पर लतागृह है, चित्रशालाएं है, क्रीडांगण है, और लकड़ी के बनाए हुए पर्वत वगैरह है, ये सब बनाया हुआ है, और रावण का घर इन वस्त्रों से बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर भी बहुत बड़ी ध्वजा लगाई हुई है, उस घर के अंदर एक बहुत बड़े रत्न का भंडार है, निधि जालम समन्तत है, बहुत बड़ा भंडार है, उसमें कितना धन है कुछ पता नहीं है, और रावण के तेज से और रत्नों के तेज से वो प्रकाशित हो रहा है महल। और वहां के जो पलंग है वो सब सोने के बनाए हुए हैं, वहां जो भी कोई पात्र काम में रहते हैं सब सोने के पात्र हैं, और वहां तरह तरह के मजीरा पान के जो पात्र है वो कहीं पड़ा है, कोई पात्र कहीं पड़ा है, कोई उल्टा पड़ा है, कोई पुल्टा पड़ा, ऐसे ही पड़ा है, ऐसा वो कुबेर भवनम यथा, कुबेर भवन के समान दिखाई देता है। रावण के इस महल में बहुत उत्तम नूपुरों की आवाजें आ रही है, मृदंग ताल आदि का उद्घोष हो रहा है, और सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियों का जमघट वहां पर लगा हुआ है। ऐसे ऐसे रावण के घर के अंदर हनुमान जी महाराज अपने को बहुत छोटा सा करके और उसमें घुस गए हैं। सवेश्म जाल बलवान ददर्श, वेश्म जाल, वेश्म बोलते हैं घर को, अनेक घरों के बीच में किसी एक घर के अंदर हनुमान जी महाराज गए, एक महल में गए, उस महल के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार के कमरे बनाए हुए देखे, बहुत बड़ी बड़ी शालाएं, कमरा तो बोलते हैं, शाला कोई कमरा बोलते हैं, परंतु शाला बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े कमरे, उन कमरों के अंदर जो है प्रधान शंखा युद्धचाप शाला, कई तो ऐसे शाला है जिसमें केवल रहने की जगह है, कई ऐसे शाल है जिसमें प्रधान प्रधान अस्त्रों के भंडार है, और कई ऐसे हैं कि जहाँ पर विचित्र विचित्र आकृतियां हैं, उन घरों के अंदर देवताओं के द्वारा कोई वहां पर पहुंचने की गति नहीं है, कई ऐसी शाला है जहां पर कोई दोष भी नहीं है, बड़ी सुंदर बनाई हुई, कोई कमी नहीं बता सके कि इनमें इस बात की कमी है, ऐसा लगता है कि मानो मायासुर ने साक्षात अपनी माया से इसको बनाया हो। ऐसे लंकाधिपति रावण के अनेक महलों को हनुमान जी महाराज देखते हैं, पर दृष्टि उनकी एक उत्तम घर के ऊपर ही है, वे उस घर के ऊपर जाते भी हैं और थोड़ी देर जाकर के सब कुछ देख करके उसको छोड़ करके दूसरे घर में भी चले जाते हैं। इसका एक कारण है, हनुमान जी ये देखते हैं कि भाई एक जगह रहने पर किसी की दृष्टि पड़ सकती है, घूमते रहने से कोई सामान्यतया दृष्टि नहीं डालेगा, हनुमान जी का मन तो एक पर ही है और दूसरों का तो केवल अवलोकन करते हैं, कहीं कहीं पर जाकर के देखते हैं कि मानो इतना सुंदर ये महल है कि स्वर्ग से गिर करके ये महल यहाँ आकर के पड़ गया हो, और कहीं पर स्त्रियों की आवाजें आती है, वो स्त्रियां चलती हैं, आती हैं, घूमती हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां पर बिजलियां चमकती हों, और उस रावण के महलों के अंदर तालाबों के हंस बड़ा मीठा जो है कलरव करते हैं, और ऐसे विमान को देखा, देखो यहाँ पर दो विमान हैं, एक तो सतमंजिला महल वो विमान और एक कुबेर वाला विमान। देखो अपने तो सोचते हैं कि जो आकाश में उड़ता है पुष्पक विमान वगैरह वही विमान है, नहीं, मकान को भी विमान ही बोलते हैं, ये संस्कृत के अंदर 7 मंजिल का जो मकान होगा उसको विमान के नाम से कहेंगे, इसलिए वाल्मीकि रामायण में कई जगह पता नहीं चलता है कि हनुमान जी महाराज पुष्पक विमान को देख रहे हैं या मकान वाले विमान को देख रहे हैं। अब ये बात है कि पुष्पक विमान का नाम भी पुष्पक विमान और रावण का एक महल था उसका नाम भी पुष्पक विमान, वो भी 7 मंजिला महल, इसलिए पुष्पक विमान के नाम से आप लोग चौंकेंगे नहीं, दोनों का नाम ही पुष्पक विमान है, और वे उस विमान के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां उस विमान के अंदर वृक्षों को देखते हैं, वहां उस विमान के अंदर केसर के वृक्ष देखते हैं और फूलों से लदे हुए वृक्ष देखते हैं, फलों से लदे हुए वृक्ष देखते हैं, उन वृक्षों के अंदर सीता जी की खोज करते हैं, और फिर एक पुष्पक नाम का जो विमान उसमें तरह तरह का प्रकाश हुआ हुआ है, उस विमान में हनुमान जी महाराज चुपचाप प्रवेश करते हैं और वहां जाकर पक्षियों का चित्र देखते हैं, और वहां उन पक्षियों का चित्र देख करके सोचते हैं कि ये चित्रकारी कहाँ की बनी हुई है, और उसके बाद वे उन वृक्षों को देखते हैं जो वृक्ष वास्तव में किसी भी समय में कभी कुमलाते नहीं है और किसी भी समय में अपने फलों को देते ही रहते हैं, किसी भी समय फल रहित नहीं होते हैं, और जिनके ऊपर सदा पक्षी विराजमान रहते हैं, नियुज्यमानाश्च गदा प्रहस्ताः सकेशराष्ट्रोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृतासुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पद्मिनी के अंदर लक्ष्मी माने कमलिनी के अंदर लक्ष्मी अपने हाथ में कमल लिए हुए खड़ी हो, इस प्रकार से वहां उस विमान की शोभा दिखाई दे रही है। ऐसे घरों के अंदर जाकर के हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करते हैं, जिस प्रकार से हिमालय की गहरी गहरी कंदराएं हैं, ऐसे उस पुष्पक विमान में तरह तरह के गहरे गहरे कक्ष बने हुए हैं, इन सब जगह घूम करके भी लेकिन हनुमान जी ने सीता को नहीं देखा। सीता तो वास्तव में दुखी हुई, अपने पति के गुणों का वर्णन अपने मन में करती हुई अपने ही जगह है, लेकिन हनुमान जी को वहां पर सीता दिखाई न दी। ततस्तदा बहुविध भावित आत्मनः, उसके बाद हनुमान जी महाराज का मन बड़ा खिन्न हो गया। खिन्न होकर के वे इधर उधर अपने नेत्रों से चारों तरफ प्रकाश डाल करके देखते हैं क्या हो रहा है, मैं कैसे अब सीता को प्राप्त कर सकता हूँ, सीता मुझे कैसे मिलेगी, कैसे सीता की माता के दर्शन होंगे। यह उनके मन में एक बड़ी भारी जो है लालसा जग रही है। तो वो जो बीच का विमान है, जो विमान अनेक रत्नों से बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि संभवतः इसमें होगा। ये विश्वकर्मा की बड़ी विचित्र कारीगरी है। दिवंगते वायु पथे प्रतिष्ठितम व्यराजतादित्य पथस्य लक्ष्म तत्। ये पुष्पक विमान है जो आने जाने वाला है। कहते हैं इस पुष्पक विमान के अंदर हनुमान जी महाराज गए। हनुमान जी महाराज ने देखा ये वो पुष्पक विमान है कि जो मेरे पिता के मार्ग के ऊपर चलने वाला, वायु के मार्ग पर चलने वाला, और उसमें वो बड़ी गहराई से उस पुष्पक विमान में एक एक चीज को देखते हैं। जो बैठने की जगह है, उन बैठने की जगहों के आगे पीछे जो खाली जगह उसको देखते हैं। वहां पर जहां कोई थोड़ी सी भी अवकाश की जगह है वो हनुमान के देखे बिना नहीं रही जाती। नते विशेषा नियते सुरेश्वपी, देवताओं के विमानों में भी वो विशेषता नहीं है जो विशेषता इस पुष्पक विमान में है। उन्होंने विचार किया कि इस पुष्पक विमान में तो कौन बैठ सकता है जिसने बहुत बड़ी कोई तपस्या से अपना समाधान किया, बड़ा भारी कोई पराक्रम जिसने प्राप्त किया हो वही इसमें बैठ सकता है, हर दूसरा थोड़ी बैठ सकता है। और बड़े बड़े पुण्यात्मा इस पुष्पक विमान में बैठ सकते हैं, बड़े बड़े यशस्वी पुरुष बैठ सकते हैं, उनके काम आने वाला, और तरह तरह की सुंदरता को लिया हुआ जिसके अंदर हंस का चित्र बना हुआ है, वो हंस जिसमें बना हुआ है आकृति से उसके अंदर हनुमान जी महाराज घुसते हैं और वहां भी जाकर के वो देखते हैं। लेकिन इस विमान के अंदर भी कहीं पर भी सीता के दर्शन हनुमान जी को नहीं होते हैं। अब वो एक पुष्पक विमान तो देख लिया ना, अब रावण का जो पुष्पक विमान माने वो सतमंजिला महल उसको देखने में अब हनुमान जी महाराज अंदर की ओर जाते हैं। अंदर की ओर जाकर के देखते हैं कि अर्ध योजन विस्तीर्ण है, आधा योजन माने दो कोष में वो फैला हुआ है। चार कोष का योजन होता है और आधा योजन माने दो कोष के अंदर वो पूरा जो है लंबा है, चौड़ा है, और दो कोष तो चौड़ा है और चार कोष लंबा है, ऐसा वो उसका पुष्पक विमान अर्थात सतमंजिला महल। उड़ने वाला पुष्पक विमान देख लिया गया, अब रहने वाला जो भवन है वो पुष्पक विमान उसको देख रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज यहाँ सीता जी की पूरी यहाँ विशेषता से खोज कर रहे हैं। राक्षस के घर के अंदर घुसते हैं और अंदर घुस करके सबसे पहले वे हाथियों की शाला में जाते हैं। हाथियों की शाला में जहाँ हाथियों का भोजन बनता है, हाथियों को कुछ दिया जाता है खाने के लिए, उन भोजन बनाने वाले जो बड़े बड़े पात्र हैं, उन पात्रों को हनुमान जी महाराज उठा उठा करके उनके नीचे देखते हैं कि सीता है क्या। हाथियों के जो ठाण है माने भोजन करने की जगह है वहां जाकर के देखते हैं, और हनुमान जी महाराज छिपे छिपे घुड़साल में चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज घुड़साल में जाकर के और वहां पूरी तरह से दृष्टि डाल करके वहां के पात्रों को देखते हैं, और उसके बाद चलते चलते हनुमान जी महाराज रथशाला में जाते हैं। रथशाला में बहुत रथ है, एक एक रथ के अंदर जाते हैं और रथ का जो वो छज्जा है उसके ऊपर जाते हैं, रथ के नीचे जाते हैं, रथशाला के कोने में जाते हैं, इधर उधर सब जगह हनुमान जी महाराज ने देख लिया कि यहाँ पर भी सीता नहीं है। तब हनुमान जी महाराज अब विचार करके, और राक्षस राज का जो अंतःपुर था जो स्त्रियों का ही था, मतलब प्रमदा लोग माने स्त्रियां ही स्त्रियां जा सकती है, उस महल के अंदर जो है हनुमान जी प्रवेश किए। अब वहां प्रवेश किए तो भाई हनुमान जी बहुत छोटे बन गए, यहाँ बहुत छोटे बन करके, और एक जालदान था उस जालदान के अंदर से प्रवेश करके और वहां पर दुबक करके चुपचाप बैठ गए। उस समय में वहां पर बहुत सी स्त्रियों को उन्होंने देखा। और रावण की शोभा देखी, घर की शोभा देखी। घर की शोभा देख करके हनुमान जी सोचते हैं कि कुबेर का भी घर ऐसा नहीं, यमराज का भी घर ऐसा नहीं, वरुण का भी घर ऐसा नहीं, जैसा जैसी रिद्धि सिद्धि इस राक्षस राज के घर पर है। और फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मणोर्थे कृतम दिव्यम दिव्यद विश्वकर्मणा विमानम पुष्पकम नाम सर्वरत्न विभूषितम। ब्रह्मा जी के कहने से विश्वकर्मा ने जो पुष्पक विमान बनाया है, अर्थात ये सतमंजिला महल बनाया है, इसको पहले कुबेर जी ने प्राप्त किया था और कुबेर जी को जीत करके और राक्षस राज ने यह सतमंजिला इतना दिव्य महल इसने प्राप्त किया है। देखो यहाँ कैसे मृगों के चित्र हैं, कैसे सुंदर सुंदर यहाँ मणियों के स्तंभ माने खम्भे बनाए हुए हैं, यहाँ पर बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चित्र बनाए हुए हैं, यहाँ हेम सोपान युक्तंच सोने के यहाँ पर पेड़ियां बनाई गई हैं। हनुमान जी महाराज उन पेड़ियों को देखते हैं और आगे हर भवन के आगे चौकी है, चौकी को देखते हैं। भवनों में आने से पहले चौकी पर विश्राम किया जाता है, उन चौकियों के ऊपर इंद्रनील मणि की फर्शे बनाई हुई है और वहां भी मणियों का खंभा बनाया हुआ है। और वे स्त्रियां कोई लाल 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 जो रक्त चंदन है, रक्त चंदन की तैयारी करके अपने शरीरों में भी लगा रही है और रावण के शरीर के लिए भी चंदन की तैयारी की जा रही है। फिर उस पुष्पक विमान के अंदर और प्रवेश करके वहां हनुमान जी महाराज देखते हैं कि यहाँ तो भाई खाने पीने की दुर्गंध आ रही है। उस दुर्गंध के कारण से दुर्गंध माने अपने लोग दुर्गंध बोलते हैं, यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पर बड़ी सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध उनके लिए हो जो इस चीज का सेवन करने वाले हैं। तो सगंधस्तम महासत्वम, वो गंध हो रही है, वो गंध मानो एक दूसरे का आह्वान करने के लिए कि इधर आओ इधर आओ, अर्थात यहाँ ये चीज बन रही है इसकी गंध आ रही है, वो गंध लोगों को बुलाती है, ऐसा इस प्रकार से गंध आ रही है, अर्थात खूब गंध आ रही, बात यह है। फिर एक सुंदर और शाला है, उस शाला के अंदर प्रवेश किए थे और वो शाला क्या थी, मणियों की बनाई हुई, मणियों की उसमें खंभे बनाए हुए, उसमें सोने के जाल, सोने के जो है जालदान बनाए हुए, हाथी दांत से उसमें तरह तरह की कारीगरी की हुई, सोने के और चांदी के वहां पर अनेक प्रकार के जो है खिलौने और अनेक प्रकार के पदार्थ वहां पर दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ समय ऋजुभिर अत्युच्च समन्तात् सुविभूषित स्तंभहि, और चारों तरफ लंबे लंबे सीधे सीधे और बहुत ऊंचे ऊंचे खम्भे उसके अंदर दिखाई दे रहे थे। वे खम्भे मानो स्वर्ग का स्थान बता रहे हो इस प्रकार से, और जो है वो पृथ्वी के ऊपर बहुत विशाल शाला बनी हुई थी, इतनी जो है वो महंगी बनी हुई है कि जिससे मालूम चलता है कि इसमें रहने वाला व्यक्ति कितना बड़ा होगा। उसमें चारों तरफ पुष्पों की सुगंध आ रही है और उसको देखते ही लोगों का मन मोहित हो जाता है। ऐसी वो रावण के द्वारा पालित वो जो शाला है, वो शाला बड़ी दिव्य है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि संभवतः लंका वासियों के लिए सबसे बड़ा यही स्वर्ग होगा, देवलोक यही होगा, इंद्र की पूरी यही होगी, या सबसे बड़ी सिद्धि यही होगी, ऐसा शायद ये लंकावासी मानते होंगे। वहां पर जगने वाले दीपकों को हनुमान जी महाराज ने देखा, बहुत बड़े बड़े दीपक थे, उन दीपकों को देखा हनुमान जी ने, देखा कि इतने बड़े बड़े दीपक हैं, इन दीपकों के नीचे तो कहीं सीता नहीं है, लेकिन दीपक के हिलाने पर तो जो है प्रकाश का हिलना होगा जिससे हम लोग पहचाने जाएंगे। परंतु फिर अंत में विचार किया कि दीपक के नीचे नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने आगे देखा कि एक बहुत बड़ा जो है कुथासीन है, माने बहुत बड़ा एक दूसरा आसन है, उस आसन को देखा, हजारों नारियां वहां पर, आसन माने बैठने की जगह, हजारों नारियां उसको घेरे हुए हैं और वो हजारों नारियां वहां पर सोई हुई है, उनके मुंह है, किसी का खुला है किसी का बंद है, मीताक्षिणी मारुति, मारुति ने देखा कि आंखें इनकी बंद है। अब हनुमान जी महाराज उन स्त्रियों के पास में जाते हैं और इन स्त्रियों के मुख से निकलने वाली जो हवा है उसमें जो गंध है उस गंध को देखते हैं। इन स्त्रियों में संभवतः कोई सीता हो सकती है, तो किसी के मुंह से पद्म की सुगंध आ रही है, किसी के मुख से और चीजों की सुगंध आ रही है, कहीं कहीं पर वहां के सुगंध के कारण से भौरे हैं वो खूब छाए हुए हैं, हनुमान जी उनसे दूर रहते हैं। फिर जाके उन्होंने देखा कि ये क्या बात है, इतनी स्त्रियों के बीच में अब सीता जी कैसे कहां मिलेंगी। तो वे उसी शाला में ही घूमते जहां पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। जो स्त्रियां भाई इस समय में नृत्य वगैरह करके थक गई है और पड़ी हुई है, उन स्त्रियों को देखा कि वो ऐसा लगता है मानो आकाश से टूटे हुए तारे ही आकर यहाँ गिर गए हों।